ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार द्वारा एक साल में किए गए कामों के बारे में बताने के लिए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड कल करेंगे राष्ट्र के नाम संबोधन। दलों के बीच सहमति और सहकार्य से ही संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को सुदृढ़ किया जा सकता है, कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा का कथन। देश में घटते तापमान के मद्देनजर जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने सभी से सावधानी बरतने का किया अनुरोध। और मध्य गजा में स्थित शरणार्थी शिविर पर इजरायली सेना के हवाई हमले में 70 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। संक्रमणकालीन न्याय से संबंधित विषय में प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं के बीच विचार विमर्श हुआ है। बैठक में प्रधानमंत्री एवं नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा, नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी थे और ये बैठक प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री सचिवालय ने दी। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड कल शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के एक साल पूरे होने के मौके पर वो सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय से राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। गौरतलब है कि विक्रम संबद 2079 पूस 10 गते को प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार केन्द्र में सुशासन, समृद्धि और सामाजिक न्याय के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री प्रचंड के प्रेस सलाहकार गोविंद आचार्य ने बताया कि वो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने, सुशासन और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने कहा है कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को सुदृढ़ करना बेहद जरूरी है। आज नेपाली कांग्रेस तनहू द्वारा आयोजित जिला सभा सम्मेलन में एवं एक भवन का उद्घाटन कार्यक्रम में सभापति देउवा ने कहा कि गणतंत्र का विकल्प नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए दलों के बीच सहमति और सहकार्य जरूरी है। देश में घटते तापमान के जिक्र के साथ जल तथा मौसम विज्ञान मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने सभी से सावधानी बरतने का अनुरोध किया है। महाशाखा के मौसमविद सरोज पुड़ा सैनी ने कहा है कि फिलहाल नेपाल में उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड बढ़ रही है, इसलिए सावधानी अपनाना जरूरी है। महाशाखा के मुताबिक दिन में बेशक धूप रहती है, लेकिन सुबह और शाम ठंड अधिक रहने के कारण लोगों को सचेत रहना चाहिए। बता दें कि जुमला में तापमान सबसे कम यानी -2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बसनेत ने कहा है कि कुछ ही वर्षों में नेपाल में लाखों छात्र सहूलियत दरों पर चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई कर सकेंगे। आज सिंधुपाल चौक के बलेफी गांव पालिका वार्ड नंबर 7 खाड़ी चौर स्थित बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालय के 59वें वार्षिकोत्सव तथा अभिभावकों की सभा को संबोधित करते हुए मंत्री बसनेत ने कहा कि एक प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज संचालन करने की सरकार की योजना है। मंत्री बसनेत ने कहा कि 12वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की सरकार व्यवस्था करेगी। नेपाल सहित विश्वभर में ईसाई धर्मावलंबियां आज क्रिसमस मना रहे हैं। हर साल 25 दिसंबर के दिन यीशु ख्रिस्ट के जन्मदिन की खुशियाली मनाने की परंपरानुसार क्रिश्चियन धर्मावलंबी क्रिसमस मना रहे हैं। गौरतलब है कि क्रिसमस के अवसर पर सरकार ने आज सार्वजनिक छुट्टी भी दी है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। दक्षिण कोरिया के लिए सन 2024 के लिए कोरियाई भाषा परीक्षा एपीएस के लिए सबसे अधिक आवेदकों ने आवेदन दिया है। वैदेशिक रोजगार विभाग एपीएस शाखा के मुताबिक पूछ 2 से 6 गते तक सबसे ज्यादा 1,43,812 युवाओं ने आवेदन दिया है। गौरतलब है कि दक्षिण कोरियाई सरकार सन 2024 में 15,848 नेपालियों को रोजगार के लिए नेपाल से ले जाने वाली है। सिंधुली में सड़क दुर्घटना में खोटांग के 2 युवकों की मौत हो गई है। सिंधुली की सुनकोशी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 बोहरेटार स्थित झांगाझोली के पास आज जब विपरीत दिशा से आ रही एक बस और एक मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई तब ये हादसा हुआ। मरने वालों में खोटांग हलेसी तुआचुंग नगर पालिका वार्ड नंबर 2 डिकुआ के 20 वर्षीय सुसल राय और खोटांग दिक्तेल रूपाकोट मझुआ गढ़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 10 पाथेका की 18 वर्षीय मुनाकला राय शामिल है। ये जानकारी पुलिस ने दी। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड विस्तार में देरी होने के कारण सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के हिसाब से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा ने दबाव यात्रा शुरू किया है। आज पार्टी सभापति रवि लामिछाने के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने नवलपरासी के गैडाकोट स्थित प्रिकुटी चौक से दबाव मूलक पद यात्रा का शुरुआत किया। दबाव यात्रा शुरू होने से पहले आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सभापति लामिछाने ने कहा कि निर्धारित समय पर सड़क विस्तार न होने से स्थानीय को समस्या झेलना पड़ रहा है, इसलिए सड़क जल्द निर्माण करने के लिए दबाव यात्रा शुरू किया गया है। नवलपुर जिला की बिनय त्रिवेणी गांव पालिका में बाघ के आक्रमण से सास बहू की मौत हो गई है। कल दोपहर घास काटने के लिए साथ में निकले सास और बहू का शव छत बिछत अवस्था में पाया गया है। ये जानकारी नवलपरासी पूर्व के एसपी नरहरि रेग्मी ने दी। प्रहरी के मुताबिक बाघ के हमले में मरने वालों में विनय त्रिवेणी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 की 59 वर्षीय मना देवी और 29 वर्षीय विष्णु पौरेल शामिल है। इसी तरह परसा की पटेरवा सुगौली गांव पालिका वार्ड नंबर 2 थरकट्टी में बाघ के हमले से स्थानीय 20 वर्षीय मनोज महतो उराव की मौके पर मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय परसा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल हमास युद्ध के बीच गजा में एक शरणार्थी शिविर पर हुए इजरायली हवाई हमले में 70 से अधिक लोग मारे गए हैं। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि रविवार देर रात एक शरणार्थी शिविर पर इजरायल ने हवाई हमले किए थे जिसमें कम से कम 70 लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अलकुंद्रा ने कहा है कि अल मगाजी नरसंहार में अब तक 70 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि इजरायली सेना ने शरणार्थी शिविर और कई घरों पर हवाई हमला किया था। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अलकुंद्रा ने कहा कि हमले में एक आवासीय ब्लॉक तबाह हो गया है। उन्होंने कहा कि हमले के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार द्वारा एक साल में किए गए कामों के बारे में बताने के लिए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड कल करेंगे राष्ट्र के नाम संबोधन। दलों के बीच सहमति और सहकार्य से ही संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को सुदृढ़ किया जा सकता है। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा का कथन। देश में घटते तापमान के मद्देनजर जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने सभी से सावधानी बरतने का किया अनुरोध। और मध्य गजा में स्थित शरणार्थी शिविर पर इजरायली सेना के हवाई हमले में हुई कम से कम 70 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।